सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, नमोकार मंत्र एवं परमेष्ठी का दूसरा पाठ है। उसमें 15वां प्रश्न का उत्तर समझने जा रहे हैं। नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? अच्छे से बैठो। नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम, नमोकार मंत्र में कौन है? पांच परमेष्ठी। हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं, नमोकार मंत्र में दो जन हैं, सच्चे देव और सच्चे गुरु, बस इससे ज्यादा कोई है नहीं, दो ही हैं। कौन कौन हैं? सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं। और ये एक हैं, दो हैं या बहुत सारे हैं? एक ही है ना, एक ही है, तो वो कौन है? ये दोनों का पूछ रहे हैं, सच्चे देव हैं और सच्चे गुरु हैं, दो हैं, तो ये दोनों ही एक एक जन ही हैं या बहुत जन हैं? ये पूछ रहा हूँ। गुरु कितने जन हैं? बहुत जन हैं। देव कितने जन हैं? बहुत जन हैं। उन देवों में दो भाग कर दिया और इन गुरुओं में तीन भाग हो गए। इस प्रकार से नमोकार मंत्र पांच पद वाला बना। देव हैं और गुरु हैं, ये कहना सामान्य कथन। और गुरुओं के भेदों को जब आप बनाएंगे तो विशेष कथन। ये गुरु कौन कौन हैं? तो वो गुरु भी अलग अलग हैं। कोई आचार्य हैं, कोई उपाध्य हैं और कोई साधु हैं। ये तीन जन गुरु की कोटि में ही आते हैं। और देव की कोटि में कौन आते हैं? अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों गुरु के कोटि में आते हैं, देव के कोटि में आते हैं। ये हो गया। अब ये संख्या में कितने हैं, ये प्रश्न उठेगा। देव के दो भेद करो, अरहंत देव और सिद्ध भगवान, सिद्ध देव, वो सिद्ध देव है। सब सिद्ध कर लिया कामों को जिस देव ने, वो सिद्ध देव। और अरहंत देव, अर्धा काम कर लिया जिस देव ने, वो अरहंत देव। अर्धा ही काम किया ना, क्या पूरा किया? चार घाती कर्म का काम करने से आधा काम हो गया, अब अभी थोड़ा बाकी है, 50% बाकी। तो देव दो देव हैं। इन दो देवों में से किस देव से हमारा उपकार हो सकता है? अरहंत देव से हमारा उपकार हो सकता है। तीन गुरुओं में से कितने गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार हो सकता है? तीनों से हो सकता है। तो किससे उपकार नहीं हो सकता? उपकार किससे नहीं हो सकता? सिद्ध भगवान से उपकार नहीं हो। एक देव हमारा उपकार कुछ भी नहीं कर सकता, और एक देव हमारा उपकार बहुत कुछ कर सकता है, और गुरु तो सभी उपकार उपकार ही हैं। ऐसा है, एक देव उपकार हमारा नहीं कर सकता, सिद्ध भगवान हमारे उपकारक नहीं है, जरा भी उपदेश नहीं देते, वहीं बैठे रहते हैं, थोड़ा नीचे उतर के आ जाएं, भव्य जीवों का कल्याण करें और फिर बाद में जाएं, जरा आना जाना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान किसी का उपदेश, किसी को उपदेश नहीं देते, इसीलिए तो उनको हम नमस्कार नहीं करते पहले। इसीलिए तो जो हमारे ऊपर अनुकंपा नहीं कर सकता, हमको देख नहीं सकता, हमारे पास नहीं आ सकता, हमारे सामने नहीं बैठ सकता, हम पूजन कर रहे हैं, आत्रा उतरा 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 कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, वहीं बैठे हैं, तो हम उनको पहले नमस्कार क्यों करें? जो हमारे सामने हैं, दिख रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, हमारे आत्मा के स्वरूप को समझाया, तुम भी भगवान बन सकते हो, अरहंत बन सकते हो, ये कह रहे, तुम भी सिद्ध भगवान बन सकते हो, मैं भी सिद्ध भगवान बनने के लिए ही इस प्रकार अरहंत पर्याय के पर्याय को मैंने प्राप्त किया, ये समझा रहे हैं। तो नमोकार मंत्र में जो नमो अरहंतानम पहला पद में अरहंत परमेष्ट को नमस्कार किया है, इसमें श्रेष्ठ भगवान कौन है? दो में अरिहंत गुणों की अपेक्षा से श्रेष्ठता, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता सिद्ध भगवान, तो गुणों की अपेक्षा से जो ज्येष्ठ हैं उनको पहले नमस्कार करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, उनसे हमको कुछ उपकार नहीं हो सकता है तो फिर बाद में देखेंगे, नमस्कार बाद में कर लेंगे, पहले जो उपकार कर रहे हैं, नमस्तो अरहंत भगवान हमको कुछ बताओ, तो तुरंत बता दिया उनने, उपकार किया, और जो उपकार करता है उनका उपकार हम पहला स्वीकार करते हैं, उनके प्रति सब कुछ करने लगते हैं। संसारी प्राणी क्योंकि स्वार्थी है, इस मंत्र में नमस्कार तो अरहंत को पहला हुआ, तो किसके वजह से हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ? स्वार्थ के कारण हुआ। किस वजह से हुआ? इसका अर्थ स्वार्थ के कारण। तो स्वार्थ ये किसको है? संसारी प्राणी को। वे कौन से संसारी प्राणी? अरहंत भी संसार के कोटि में ही आते हैं। देखो, तीर्थंकर भगवान कभी भी अरहंत को नमस्कार नहीं करते, शेष परमेष्टियों को भी नमस्कार नहीं करते, शुद्ध शुद्ध को छोड़कर, मुनि अवस्था में भी नहीं करते, गृहस्थ श्रावक अवस्था में भी नहीं करते, वो भी तो स्वार्थी होना चाहिए ना। सुनो तो क्या बता रहे हैं, सुनो, अरिहंत तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में शुद्धों को नमस्कार किया, मुनि अवस्था में भी शुद्धों को ही नमस्कार करते हैं, अरहंत अवस्था में किसको नमस्कार करते हैं? है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। हाँ, अरहंत अवस्था में वंदी वंदक भाव जो होते हैं, गया हो, वंदी वंदक जो भाव होते हैं, देखो क्या हो गया, वंदी वंदक भाव जो होते हैं वे वंद्य वंदक भाव प्रथम गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक होते हैं। वंद्य वंदक भाव ये वंदनी हैं, वंद्य हैं और मैं वंदक हूं। इस प्रकार नमोस्तु और भक्ति स्तुति आदि ये जो किया जाता है कौन से गुणस्थान तक? छठे गुणस्थान तक, ज्यादा से ज्यादा कहो सप्तम गुणस्थान तक, जो प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान होता है वहां तक। हम स्तुति पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय अशुद्ध पढ़ रहे हैं, ये छठा गुणस्थान है क्योंकि ये प्रमाद है। अशुद्ध पढ़ना प्रमाद है, शुद्धि की ओर ध्यान नहीं जाना प्रमाद है, ये छठा गुणस्थान है। और बिल्कुल मन को एकाग्र करके अप्रमत्त होकर स्तुति कर रहे हैं, ये अप्रमत्त अवस्था है। ये अप्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त अवस्था है ये सप्तम गुणस्थान है। सप्तम गुणस्थान का नाम क्या? अप्रमत्त। सप्तम गुणस्थान का नाम अप्रमत्त गुणस्थान और छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त गुणस्थान। प्रमत्त गुणस्थान दोषपूर्ण गुणस्थान, प्रमाद वाला गुणस्थान, और सातवां गुणस्थान अप्रमाद वाला गुणस्थान। स्तुति हम छठे में भी करते हैं, स्तुति हम सातवें में भी करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। परंतु सप्तम गुणस्थान में ये अवस्था भी है कि नहीं? ध्यानावस्था। सप्तम गुणस्थान में दोनों कार्य हैं, भक्ति करने का भी कार्य है और भक्ति से मुक्त होकर आत्मा का ध्यान करना, मन वचन काय को रोकना, गुप्ती को धारण करके आत्मा में विलीन होने का भी कार्य है। तो दोनों अप्रमत्त है। पहला वाला भाग शुद्ध पढ़ने से, पढ़ने में कोई प्रमाद न होने से ये सातवां गुणस्थान। दूसरा वाला भाग पढ़ना भी छोड़ दिया और अपने आप में लीन हो गए, इसलिए वो भक्ति से मुक्त गुणस्थान है। दूसरे वाले भाग में भक्ति है ही नहीं, भक्ति ही नहीं करते वो। क्या करते? गुणस्थान तो एक ही है, उसमें दो पार्ट, एक में भक्ति सहित और भक्ति रहित। तो भक्ति रहित गुणस्थान में कौन सी भक्ति करते? आत्म भक्ति यानी आत्म ध्यान कहो उसको, कोई स्तुति नहीं बोलते आत्मा के बारे में, कोई स्तुति बोलकर नमोस्तु आत्मा ऐसा नहीं चलता। तो भक्ति करते समय हम वंदना आदि करते, ये है ना? वंदना आदि कार्य किस समय होते हैं? क्या ध्यान में? ध्यान में बैठे कैसे हाथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते। तो ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में केवल चिंतन चलता है, किसी एक तत्व को लेकर के, एक द्रव्य को लेकर के, या जीव तत्व को लेकर के, आत्म तत्व को लेकर के चिंतन धारा जारी रहती है। ये सातवां गुणस्थान। सातवें गुणस्थान में जो पार्ट किया है वो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में भक्ति है, सेकंड पार्ट में पंच परमेष्टियों की भक्ति नहीं, पर की भक्ति नहीं, आत्मा की भक्ति है। सेकंड पार्ट में आत्मा की भक्ति, फर्स्ट पार्ट में पंच परमेष्टि की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की विनय इत्यादि क्रियाएं ये छठे सप्तम में होती रहती हैं। अब सप्तम से छठा कैसे बनता है, तो पढ़ते पढ़ते अशुद्ध पढ़ लिया तो छठे को स्पर्श कर लिया, फिर शुद्ध पढ़ने लगे तो सप्तम हो गया। ये सब ऐसा है, देखो पढ़ना भी माफ नहीं है, जरा भी गलती पढ़ लिया तो माफ नहीं कहा जाएगा उसको। हम प्रवचन कर रहे हैं और बोलते बोलते जीव द्रव्य बोलना था, पुद्गल द्रव्य बोल दिया, ये कौन सा गुणस्थान? ये प्रमाद हो गया, ये छठा गुणस्थान। बिल्कुल सावधानी से संभाल संभाल करके बोल रहे हैं, एक भी गलती नहीं रही, ये कौन सा गुणस्थान? ये सातवां गुणस्थान। पर ये दोनों ही गुणस्थान, सातवां गुणस्थान का पहला पार्ट और छठा गुणस्थान, ये दोनों ही गुणस्थान शुभ भाव वाले हैं, और वो सेकंड पार्ट शुद्ध भाव वाला है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब शुद्ध भाव वाले हैं, और जब ध्यान के बाद पुनः हाथ जुड़ जाता है, दिग्वंदना चलती है, तो उसमें भी देखो दिग्वंदना करते समय बोलते बोलते श्लोक अशुद्ध बोल दिया, छठे में आ गए, और फिर ख्याल आया कि गलत बोल रहा हूं तो सही बोलने लग गए, तो सप्तम हो गया, फर्स्ट पार्ट में आ गए। और तुरंत तो आप सेकंड पार्ट में जाना चाहते हैं, तो पर छोड़ो इसको, सामायिक से उठे ही क्यों, सामायिक से नहीं उठना, और सामायिक में बैठ जाना। तो सेकंड पार्ट में गए, तो फर्स्ट पार्ट से अधिक कर्म निर्जरा असंख्यात गुणित सेकंड पार्ट में है, और सेकंड पार्ट से भी अधिक गुणित निर्जरा फिर आठवें गुणस्थान में, नौवे में, दसवें में, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे शुद्ध भाव घनीभूत होता जाएगा। शुद्ध भाव प्रारंभ कहां से होगा? सातवें से। और घनीभूत कहां होगा? आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें। शुद्ध भाव को ही हम घनीभूत बनाते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग ये अभेद उपयोग है। अभेद का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्रय का पालन है, ये व्यवहार रूप नहीं है, निश्चय रूप है। निश्चय रूप में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये तीनों अभेद हैं। अलग अलग होते हुए भी अभेद हैं। कैसे हैं? तो एक रस्सी पानी खींचने की, उसमें तीन डोरी रहती है और तीनों को एक बनाया है, एक बनाया है, ये निश्चय है। ये तीनों एक जब रहेंगे तो निश्चय, और इन तीनों को खोल देंगे तो व्यवहार। तो जहां व्यवहार है, तीनों को अलग अलग खोला गया है, तो यहां पर प्रवृत्ति है, यहां शुभोपयोग है। तो सप्तम गुणस्थान का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये भी शुभ रूप ही है, ये भी बोलता है, निर्वृत्ति नहीं है, बोलने की प्रवृत्ति है। ये वचन गुप्ति, बोलना बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए, अब उपदेश नहीं, चर्चा नहीं, चलो उठो, काम हो गया। निश्चय बोलता नहीं, व्यवहार बोलता है। निश्चय नहीं बोलता, व्यवहार बोलता है। व्यवहार में मन, वचन, कायों की स्थिरता नहीं, मन, वचन, काय सदा किसी न किसी प्रवृत्ति में लगी हुई है। कभी भक्ति कर लिया, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी तत्व चर्चा कर लिया, कभी जंगल गए, कभी लघुशंका गए, कभी विहार किया। ये कौन सा गुणस्थान है? प्रवृत्ति वाला, छठा सप्तम वाला, फर्स्ट पार्ट, छठा सप्तम होता रहता है। इसमें चलते समय प्रमाद हो जाना छठा, और फिर संभालना सप्तम। सप्तम चतुर्थ गुणस्थान व्यवहार सम्यक दर्शन है। वो क्षायिक सम्यक तो भी व्यवहार रूप ही है। देखो, सप्तम गुणस्थान का पहला पार्ट व्यवहार है क्या? नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति है, मन वचन काय स्थिर नहीं है, यानी ध्यान में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार। निश्चय किसको बोलते हैं? ध्यान में रहना, यही निश्चय है। निश्चय का अर्थ ये है, निश्चय किसको बोलते हैं? मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा निश्चय को निश्चय बोलेंगे? वो नहीं। निश्चय का मतलब व्यवहार में जितने प्रवृत्तियां हैं, भक्ति करने की, जाने की, आने की, आहार लेने की, चर्चा करने की, सब स्टॉप कर दो। ये सब व्यवहार है, ये सब स्टॉप कर दो, अपने आप में डूब जाओ। काया को हिलाना नहीं, किसी से बोलना नहीं, मन को बोलने के तरफ नहीं ले जाना, मन को चिंतन में लगाना, बोलने की इच्छा, ध्यान में बैठे हैं, उपदेश देना है, 3:30 बज गया, बाहर आ गए। हम कहाँ आ गए? सेकंड पार्ट में थे, फर्स्ट पार्ट में आ गए, उठ के चले आए, बैठ गए, उपदेश शुरू हो गया। पंच परमेष्टि कहना था और पंच परमेटी कह दिया, छठे में आ गए। बहुत कठिन है, कितना बारीक है जैन धर्म। और ये गुणस्थान है, गुणों का स्थान, गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। तो छठे में भी गुण है, दोष ही ऐसा नहीं, गुण है। क्या गुण है? ये गुण है कि बोलते समय चूक गए, ये दोष है, लेकिन चूकने के बाद भी इसको निरंतर नहीं करेंगे। गलती हो गया, तस्मिच्छाम दुकड़ा, प्रतिक्रमण करेंगे, ऐसा गलत नहीं बोलेंगे। तो ये प्रतिक्रमण हुआ, प्रायश्चित हुआ, तो छठे से नहीं गिरे। छठे से गिरने के लिए क्या करना पड़ता है, ये प्रश्न उठता है। तो क्या करना पड़ता है? तो छठे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। छठे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। कितने परिग्रह? 24 परिग्रह, बहिरंग 10, अंतरंग 14। इनको त्यागे बिना छठा गुणस्थान होगा ही नहीं। बहिरंग 10 को त्याग दिया और अंतरंग को ज्यों के त्यों बनाए रखा तो हाँ। तो 14 सभी यदि रखते हैं तो पहला गुणस्थान, क्योंकि उन 14 में मिथ्यात्व भी है ना, तो मिथ्यात्व नहीं त्यागा निर्ग्रंथ मुनि बनने के बाद। मिथ्यात्व को नहीं त्यागा तो पहले गुणस्थान, और यदि उसको त्याग दिया तो चौथा गुणस्थान। अब क्या त्यागना? अब कषाय त्यागो। कौन सी कषाय? जो कषाय परिग्रह की ओर ले जाती है, 10 प्रकार के परिग्रह की ओर जो आकर्षण कराती है, ऐसी कषाय को त्यागो। तो ऐसी कषाय कितनी है? जो परिग्रह की ओर हमें आकर्षित करती हैं, तो वो दो है अप्रत्या के अनावरणी क्रोध मान माया लोग परिग्रह की ओर ले जाती है, प्रत्या के अनावरणी क्रोध मान माया लोग परिग्रह की ओर ले जाती है। ये अप्रत्या के अनावरणी क्रोध मान माया लोग जो चौथे गुणस्थान की कषाय है, ये दसों परिग्रह की ओर ले जाती है। और प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोग जो है वो एक देश परिग्रह को छोड़ो, जो छोड़ा है उसको मत छुओ, लेकिन बाकी शेष जो है उसकी ओर ले जाती है। ये अनुवृत है। अनुवृत्ति क्या करता है? एक देश त्याग, परिग्रह छोड़ता भी है और नहीं भी छोड़ता, दोनों बातें हैं उसकी। सयमा संयम उसका नाम, असयम भी है और संयम भी है। उस गुणस्थान का नाम भी वीरता विरत या सयमा संयम कहा है। तो ये सयमा संयम गुणस्थान क्या चीज है? असयम भी है तो संयम भी है। असयम किस वजह से है? जितना परिग्रह रखा है उसके वजह से असयम, और जितना त्यागा है उसके वजह से संयम। तो संयम और असयम, संयम प्लस असयम, सयमा संयम। तो ये प्रत्याख्यानावरणी कषाय पंचम गुणस्थान वाला ये किधर खींचते हमें? असयम की ओर। जितना परिग्रह त्यागा नहीं है उस ओर तो चलो 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 जल्दी चलो, वो करना है, वो खींच करके ले जाती है। तो परिग्रह की ओर खींच कर ले जाने वाली कषायें तो दो हैं। और आपको मोक्ष मार्ग से वंचित ही रखने वाली कषाय, और सदा विषयों में ही रहो, उसी को प्राप्त करो, धर्म की चिंता मत करो, धर्म करो लेकिन उससे भी भौतिक सुख ही प्राप्त करते रहो, ऐसा काम करो, ऐसी कहने वाली कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी। देखो ये कषायों की पहचान ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी कषाय हमको क्या क्या कराती है, किस कषाय के उदय में हमारे परिणाम कैसे रहते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना तो गुणस्थान चढ़ ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि भी बनना है, पहले धर्म सम्यक तो धर्म उसको भी पाना है तो कषाय का स्वरूप समझना ही पड़ेगा। तो अनंतानुबंधी का लक्षण क्या है? जीव को आत्म कल्याण से वंचित रखना, ये अनंतानुबंधी का लक्षण है। हम धर्म करना चाहते हैं, ये भाव तो होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय कहती है करना हो तो करो, लेकिन सम्यक तो धर्म जो चौथा गुणस्थान वाला है उसको नहीं करना, बाकी सब करना। क्या? बाहरी त्याग तपस्या जो कुछ भी है जो करना चाहो का करो, मेरे तरफ से परमिशन है, अनंतानुबंधी ये कहती है। दस परिग्रह सब छोड़ो, उससे राग मत करो, जो छोड़ा है उससे राग मत करो, परंतु ये त्याग ये तपस्या ये दसों परिग्रह का त्याग पुनः आपको भोग में प्रवृत्त कर सके, डबल व्याज दे सके, ऐसा धर्म करो, मेरे तरफ से फुल परमिशन है। मुनि बनने का निषेध नहीं, मुनि बनो, लेकिन क्या मांगो? दस छोड़ने के बाद 20 मांगो, डबल मांगो। आप सोचो दुनिया में यही धर्म चलता है या ओरिजिनल धर्म चलता है? एक छोड़ करके 2 मांगते हैं, 4 छोड़ करके 8 मांगते हैं, और ज्यादा मिल जाए तो भाग्यवान समझते हैं अपने आप को देव की कृपा से। हाँ, ये धर्म अच्छा लगता है। ये धर्म अगर अच्छा लगता है तो ये धर्म धर्म नहीं है, ये धर्म धर्म नहीं है, नकली है। नकली नोट भी अच्छे लग सकते हैं और असली नोट भी अच्छे लग सकते हैं, नकली नोट किसको अच्छे लगते हैं, ये देखो विचार करो, चोरों को। जो चोर हैं उनको नकली नोट अच्छे लगते, जो फंसाना चाहता है वो चोर ही तो है ना। नकली नोट छपवा करके किसी को फंसाना चाहता है उनको अच्छे लगते हैं, किंतु जिनको फंसाना ही नहीं उनको कौन से नोट अच्छे लगते हैं, असली नोट। तो ये सम्यक दृष्टि है, चोर मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा अनंत अनुबंधी कषाय कहती है, ऐसा धर्म खूब करो जो नकली वाला है। अनंत अनुबंधी नकली धर्म की ओर प्रेरणा देती है, आप चाहो तो, और नहीं चाहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए तो ऐसे ही पड़े रहो, मैं तो तुम्हारे साथ रहती हूं, ये अनंत अनुबंधी कषाय कहती है। पर जब तक तुम अपने आत्मा की ओर ध्यान नहीं ले जाओगे, आत्म कल्याण के संबंध में नहीं सोचोगे, सम्यक दर्शन धर्म के बारे में विचार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें रास्ता मैं दे नहीं सकती, उसके लिए भी रास्ता छोड़ देती हूं। लेकिन चिंतक तो बनो, कौन सा धर्म करना है, आत्म कल्याण वाला या भोग पाने वाला, भोग वैभव पाने वाला धर्म चाहिए या आत्म कल्याण वाला धर्म चाहिए। तो निर्णय जीव पर है, निर्णय जीव के ऊपर है, जीव ये निर्णय ले ले कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। तो अनंत अनुबंधी कहती है, आत्म कल्याण करने के लिए तुम अगर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकती, साथ छोड़ दिया हमने। तो अनंत अनुबंधी पहले गुणस्थान में बैठ जाती है और जीव कहाँ आता है, चौथे में आता है। तो ऐसा आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को गुण बढ़ते जाते हैं, गुण को बढ़ाना ये गुणस्थान है, गुणों को बढ़ाना गुणस्थान है। चौथे में आ गए तो एक गुण बढ़ गया, कौन सा गुण, सम्यक तो धर्म ये गुण है, सम्यक तो गुण बढ़ गया, आ गया सम्यक तो गुण आ गया। और ये सम्यक तो गुण जब तक रहता है तब तक आप धर्मात्मा, असली नोट, ये धर्मात्मा का रूप अंतरंग बहिरंग से असली है। और ये सम्यक तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के श्रद्धान के बिना आता नहीं है। मिथ्या देव गुरु शास्त्र की कामना हमारे मन में क्यों होती है, अनंत अनुबंधी उदय के कारण से, ये अनंत अनुबंधी उदय के कारण से होती है। और फिर इधर सम्यक्त्व की ओर रुझान बढ़ गया, ध्यान चला गया और उसको हम पाने जा रहे हैं, हमने ठान लिया, निर्णय कर लिया कि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजना है, अन्य को त्यागना है। क्यों, वहां पर जाने से क्या मिलने वाला है, आत्म की बात मिलती नहीं है, आत्म तत्व की बात मिलती नहीं है, वहां तो भोग वैभव पा सकते हैं, वो क्या करना मुझे, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, भोग वैभव मुझे नहीं चाहिए। आत्म कल्याण करने वाले को भोग वैभव तो स्वाभाविक रूप से जैसे घास मिलता है ना, ज्वारी तो मिलता ही है, पर घास तो अपने आप जैसे मिलता है ना, वैसे अपने आप मिलता है। तो सम्यक दृष्टि जीव सोचता है, सम्यक दृष्टि जीव ये सोचता है कि मुझे आत्मा का ही कल्याण करना है, कुछ नहीं करना है, ये ठान लिया तो उसको मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र रुचते नहीं है। सम्यक देव, सम्यक गुरु और सम्यक शास्त्र ये रुचते हैं, ये अच्छे लगते हैं और ये निरंतर रहना चाहिए। हाँ, एक दिन रुच गया और दूसरे दिन नहीं रुच रहा है, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ, हाँ ये क्या है, उधर गए तो उधर गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, ऐसा चलेगा क्या? आत्मकल्याण ऐसा नहीं चलता। नकली नोट के पास गए तो नकली जैसे बन गए, उसको लेने की भाव आए, और असली नोट के पास गए तो असली नोट की इच्छा हो गई। इसमें दुख कहां है? नकली के ग्रहण में दुख है कि असली के ग्रहण में दुख है? नकली के ग्रहण में दुख है, क्योंकि नकली नोट लिए और कहीं देने के लिए चले गए और पकड़ में आ गए तुम जेल में पड़ जाओगे। तो यहां पर भी मोक्ष मार्ग में जेल है। जो मिथ्यादेव शास्त्र गुरु को भजने लगता है तो नकली नोट को चाहता है, वो गंगा गया तो गंगादास हो गया, अब उसको छोड़ करके इधर आएगा तो यमुनादास बन जाएगा। तो जब जब उधर जाता है तब तब उसको दंड मिलता ही है। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म भी बंद गया, मिथ्या तो कर्म भी बंद गया, और ये किस जेल में ले जाएंगे? संसार के अनंत जेल में लेकर के डाल देंगे। और यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा, तो ये जेल से मुक्त करा देंगे आपको। कैसे मुक्त? अनंत संसार का जो जेल था आपको सब माफ कर दिया गया, और समय को अल्प रखा गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल निश्चित हो गया। ये अनंत है क्या? ये अनंत काल नहीं है, ये हमारा कल्याण करेगा ये धर्म। तो धर्म ने हमको अनंत काल के दुखों से बचाया क्या? नहीं, अनंत अनंत काल तक चलने वाले थे, ऐसे जाने वाले थे दुख भोगते भोगते भोगते, उस दुख से किसने बचाए? सम्यक दर्शन ने बचाए। सम्यक दर्शन कैसा उत्पन्न हुआ? हम अपने को पाने के लिए, हम अपने कर्म की निर्जरा के लिए, हम संसार के बंधन से छूटने के लिए, हम अनंत काल के संसार को समाप्त करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का शरण ले रहे हैं, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु। इनका काम क्या चल रहा है? स्वतंत्र होने का ही है ना। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिन। स्वतंत्र होने के लिए ही ये सब प्रयत्न चल रहा है, प्रयास चल रहा है। ये भी वैसे ही है और हम भी वैसे, इनका भी लक्ष्य वही है, हमारा भी लक्ष्य वही है। तो इनके साथ इनका मेल है, इनके साथ ये दोनों सहधर्मी हैं, दो व्यक्ति हैं, एक ही लक्ष्य वाले हों तो बंधु कहलाते, दोनों साथ साथ चलते, साथ साथ काम करते, साथ साथ खाते, साथ साथ सोचते, साथ साथ चिंतन करते, सब साथ चलता है। दोनों को एक ही पाना है, क्या पाना है? मोक्ष पाना है। तो एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी सहधर्मी है। किसके लिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए सम्यक्त्व की अपेक्षा से सहधर्मी, किंतु असंयम की अपेक्षा से विधर्मी। सह धर्मी, सह पाठी, ये जो शब्द हैं, क्या बोलते हैं ये शब्द? एक ही धर्म हो, हमारे पास जो धर्म है वो इनके पास भी हो, तो दोनों धर्म की समानता के कारण से सहधर्मी यहां भी है वहां भी है, यहां जो धर्म है वही धर्म वहां भी है, इसका नाम सहधर्मी। और यहां धर्म अलग है और यहां धर्म अलग है तो विधर्मी। तो हम ये बता रहे हैं कि चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक मुनि के लिए सहधर्मी है भी और नहीं भी, एक अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से? हाँ? सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। गुरु भी सम्यक दृष्टि है और शिष्य भी सम्यक दृष्टि, ये सधर्मीपना है। लेकिन गुरु तो सम्यक चारित्रवान है, गुरु तो संयमी है, परंतु शिष्य संयमी चौथे गुणस्थान में हो नहीं सकता, जो चौथे गुणस्थान असंयम का गुणस्थान है वहां हो नहीं सकता। ले सकता है, लेकिन है क्या वो? चौथे गुणस्थान में रहते हुए संयमी है क्या? पंच पाप त्यागा है क्या? नहीं। तो चारित्र गुण यहां है, चारित्र धर्म यहां है, कहां? मुनि के पास, और चौथे गुणस्थान वर्ती के पास नहीं है। तो ये क्या हुआ? विधर्मीपना हुआ। तो मूलाचार आदि ग्रंथों में क्या कहा आचार्यों ने, भगवंतों ने क्या कहा? देखो, विधर्मी का संग ज्यादा नहीं रखना, संगति ज्यादा नहीं रखना। तो कम रखना, कम भी नहीं रखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक संयमी असंयमी के बीच में रहने लग जाए तो वो भी असंयमी हो जाएगा। ये कुसंग है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बुलाओ, कोई बात नहीं, चर्चा करो। सम्यक दर्शन के दोष कितने हैं महाराज? 25। तो छोड़े हो क्या? हाँ बिल्कुल छोड़े हैं। तो बैठो, कोई बात नहीं, हमारा भी सम्यक दर्शन नहीं बिगड़ेगा, इनका भी नहीं बिगड़ेगा, इनका तो विकास होगा, और मुनि के पास तो पहले से ही है, मुनि के पास तो पहले से ही है। किंतु सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो उनको बुलाना नहीं है, चारित्र की बात करना है और उन्हीं के साथ रहना है। और तो उनके पास तो चारित्र है ही नहीं, और उनको साथ कर लिया, साथ रखा, तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ? जैसा संग वैसा भंग। तो इनका संयम जा सकता है, इसलिए श्रावकों का संपर्क ज्यादा नहीं करना, ये भी कहा है। हाँ? असंयमी आपको क्या दे सकता है? ऐसा आचार्य श्री कहते, आप क्यों उनकी संगति कर रहे हैं? आप उनसे कुछ मिलने वाला है क्या? जो सम्यक दर्शन भी है वो उनसे उत्कृष्ट है। छठे गुणस्थान का सम्यक दर्शन और चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन एक सा है क्या? विशुद्धि और अधिक है सम्यक्तु में। और फिर मिलने वाला क्या है? मुनि असंयमी के पास जाए तो असंयमी मुनि के लिए क्या देगा? हाँ, ये बात अलग है, असंयमी यहां आया है, अपने पास आया है, तो आने दो। फिर किस उद्देश्य आया है पहले पूछो, फिर बिठाओ उनको। किस उद्देश्य आया है? महाराज, मैं भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाना चाहता हूँ, इस संबंध में चर्चा करने आया हूँ। अच्छा, तो बैठ जाओ, दिन भर बैठो तो भी मैं बिठा दूंगा। जो धर्म की बात करता है उनको तो बिठा सकते हैं, लेकिन जो धर्म की बात नहीं करता उनको बिठाने से संयम की हानि होगी, रत्नत्रय की हानि होगी, ये बता रहे हैं मूलाचार ग्रंथ में। और आचार्य श्री कहते हैं असंयमी के साथ संपर्क साधना, उनसे क्या मिलने वाला है आपको? क्यों साधा, क्यों संपर्क साध रहे हैं? तुम्हारी संपत्ति रत्नत्रय संपत्ति, उनके पास रत्नत्रय संपत्ति है ही नहीं, और बाह्य संपत्ति उनके पास है, तो वो चाहते हो क्या? नहीं नहीं, वो नहीं चाहते। फिर किस साधा क्यों? उनके पास रत्नत्रय की संपत्ति है क्या? नहीं है। फिर क्यों साधा? मुनि धर्म में कितना क्या लगाम लगाया है देखो। कैसे कैसे लगाम लगा करके, कितनी कितनी सारी बातें, चिंतन मनन करके आचार्यों ने लिखा है, वो चिंतन मनन भी भगवान ने जो कहा उसको सूत्रबद्ध लिपिबद्ध करने के लिए चिंतन तो करना पड़ता है, क्या लिखें, कैसा लिखें, भगवंतों ने ऐसा लिखा है, कहा है और आचार्यों ने ऐसा लिखा है, तो ये बात यहीं रह गई। गाड़ी जाती है, उस चर्चा का कोई अंत आता नहीं है, टाइम कम पड़ता है, दोपहर को 1.5 घंटा भी कम पड़ता है और सुबह 1 घंटा पता ही नहीं चलता, ऐसा हो रहा है, रोज रोज हो रहा है ये। हाँ, पहली बार आपने पूछा, बहुत अच्छा है, आपको बिठाएंगे अपने साथ, पर चारित्र की भी जरा बात करना। आपने हमसे संपर्क साधा तो उपकार जरूर करेंगे, लेकिन हम आपका संपर्क साध नहीं सकते, और संपर्क सूत्र भी अपने पास नहीं है, उसका नाम संपर्क सूत्र है। हम इसको क्यों नहीं रखते हाँ? नहीं, परिग्रह है, ऐसा नहीं, हम क्यों नहीं रखते, हमको संपर्क साधना तो हमारे जैसे जो हैं उनसे संपर्क साधना चाहिए, और हमारे जैसे जो दूसरे रहते हैं उनके पास नहीं है तो हम क्यों रखे। इसलिए हम नहीं रखते। अरहंत भगवान को भी एक दे दो तो मैं भी रख लूंगा, विदेह क्षेत्र जाओ एक रख करके आओ, वहां अरहंत भगवान जब भी हमारे भारत देश के भारत क्षेत्र के मुनि हैं वो आपसे संपर्क जब साधेंगे, कोई शंका स्वाध्याय में आ गई तो समाधान करने के लिए रख के जाते हैं, और शुरू करके आ जाओ इधर भगवान, वहां से हम संपर्क साधेंगे और आप बोल देना, और जहां जहां विहार करोगे ये साथ ही रखना, भगवान स्वीकार करेंगे। तो भगवान नहीं करते हैं तो उनके नीचे तो आचार्य परमिष्टि हैं, वो स्वीकार करेंगे, तो आचार्य परमिष्टि के नीचे उपाध्याय हैं वो करेंगे, तो उनके नीचे तो साधु हैं वो करेंगे, तो भगवान ने ही नहीं किया तो तीनों नहीं करेंगे, भगवान ने स्वीकार कर लिया तो तीनों परमिष्टि स्वीकार करेंगे। परिग्रह है ना, परिग्रह क्यों परिग्रह है, ये विकल्प का कारण बन सकता है, क्योंकि ये कब आता कोई भरोसा थोड़ी है, हाँ? हम शुद्धोपयोग में हैं और वो बज रहा है तो हम इधर देखें कि शुद्धोपयोग को देखें, आत्मा को देखें कि इसको देखें, ये इस बड़ी समस्या है, और इस प्रकार विकल्प आ सकता है, इसलिए कभी भी मुनि संपर्क सूत्र रखते नहीं और संपर्क साधते भी नहीं। मुनि का संपर्क साध सकता है, देखो मुनि के संपर्क को साध सकते हैं, कब कैसा विधि है उसका भी विधि विधान है, उसका भी संविधान है, उसकी भी पद्धति है और एक क्रम है। साधु परमेष्टि आचार्य परमेष्टि के पास जब जाएंगे तो वो जब ये संपर्क साधेंगे, साधु जब आचार्य का संपर्क साधेंगे तो पहले जाकर के विनय के साथ वहां बैठ जाते, नमोस्तु कहते, एक बार नहीं दो बार कहते हैं, दो बार नहीं तीन बार कहते हैं, फिर वो देखते हैं कोई काम होगा इसलिए बार बार नमोस्तु शब्द आ रहा है, तो ध्यान देते हैं, क्या है समस्या पूछते, क्या है समस्या, तो हमको कुछ शंकाएं आई हैं स्वाध्याय में और हमको उत्तर लेना है आपसे। तो निवेदन तीन बार होता है, निवेदन तीन बार होता है और प्रत्यक्ष होता परोक्ष नहीं। परोक्ष रूप से तत्व चर्चा कभी होती, शंका समाधान कभी होता नहीं है। शंका समाधान एक को है और दूसरे को भेज करके शंका समाधान ला रहे हैं तो उत्तर देते नहीं है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए उत्तर देते नहीं। कितना बारीकी है, कितना बारीक है जैन धर्म, ऐसा बारीक है इसलिए सच्चा धर्म है, ऐसा बारीक है इसलिए हमारा आत्म कल्याण करने की शक्ति इस धर्म में है। ऐसे धर्म को स्वीकार करने वाला भाग्यवान माना जाता है, भाग्यवान। वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में भगवान बन जाएगा, इसलिए भाग्यवान है। और इस सच्चे धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा हमारी नहीं रहेगी तो भगवान तो नहीं बन सकता है, बागवान कई बार बन सकता है। बागवान, बाग, बाग यानी बगीचा, बगीचा में जो रहता है ना, व्यवस्था करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उगाता है, रक्षा करता है, बाग की रक्षा करने वाला बागवान, और सम्यक दर्शन की रक्षा करने वाला भगवान, भाग्यवान। भाग्यवान ही भगवान बन सकता है और जिनका भाग्य नहीं है वो बागवान बनता है। हो सकता है, क्योंकि उसमें परफेक्ट शब्द रहते हैं और परफेक्ट शब्दों को वो लिखित रूप से भी दे सकते हैं, और यदि स्वयं नहीं देना चाहे तो दूसरे से वो कह करके दिलवा सकते, दिलवा सकते, क्योंकि चिट्ठी पर एक विश्वास आता है। किसी दूसरे से चर्चा करवाएंगे तो विश्वास आने वाला नहीं है, उनका क्या भाव है स्पष्ट होना चाहिए ना। तो व्यक्ति प्रश्न करेगा दूसरा कोई और, तो स्पष्टता नहीं रहेगी, और लिखित रूप से हो तो अभिप्राय समझ लेंगे और जितना बनता है उसका उत्तर उतना वो कह सकते। बहुत संविधान है यहां, उन सबको निभाए बिना हम परमात्मा नहीं बन सकते। पहला रत्नत्रय को निभाना पड़ेगा, और रत्नत्रय को निभाने वाले को कहा है पिंची, कमंडलू और शास्त्र। शास्त्र ये तीन के रखने के अधिकारी हैं, पिंची, कमंडलू और शास्त्र। महाराज फिर चश्मा, तो चश्मा किस लिए है? शास्त्र पढ़ने के लिए, उसके बिना तो पढ़ नहीं सकते। तो वो परिग्रह की कोटि में नहीं आ सकता, वो आंख का उपकरण है, शास्त्र ज्ञान का उपकरण है। ये बहिरंग आंख का उपकरण है और ये देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन नहीं, पिंची, कमंडलू, शास्त्र, ये तीन उपकरण है और यह सह उपकरण है, यह सह उपकरण है। और ये नहीं रहेगा तो कई समस्याएं खड़ी होती है संयम में, रत्नत्रय के पालन में। एक तो ज्ञान नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ नहीं सकते, दूसरा जब चलेंगे तो जीव नहीं दिखेंगे, तो दूसरी हानि ये हो सकती है। और जीव रक्षा ही नहीं होगी तो फिर तो असंयम आ जाएगा, तो इसलिए ये अनिवार्य है। जिससे संयम का पालन होता है, जो संयम के पालन में वह सहयोग दे सकता है, वह तो उपकरण की कोटि में ही आएगा। और जो इंद्रिय विषय रूप परिग्रह है और संयम में किसी भी प्रकार से उसका सहयोग नहीं है, इंद्रिय विषय है, वे इंद्रिय विषय तो अनायतन के कोटि में आते हैं। रत्नत्रय के लिए इंद्रिय विषय अनायतन है, और यह चश्मा चश्मा सह उपकरण, किंतु ये संपर्क सूत्र कौन सा उपकरण कैसे घटित करेंगे? संपर्क सूत्र किस उपकरण में आएगा? ज्ञानोपकरण में आएगा क्या? ज्ञानोपकरण तो शास्त्र है और ये चश्मा है, पढ़ने के लिए ये है, तो ज्ञानोपकरण यहां है। संपर्क सूत्र ज्ञानोपकरण कैसे हो सकता है? नहीं, हम तो जब जब गुरु से वो करेंगे, शास्त्र चर्चा करेंगे, संपर्क सूत्र पर करेंगे, इसका क्या उत्तर है? तो ये तो ज्ञानोपकरण में आना चाहिए। हाँ ठीक है, ज्ञानोपकरण में आना चाहिए, मान के चले, मानो नहीं मान के चले ज्ञानोपकरण है, तो फिर उसके लिए कुछ भोजन देना पड़ता है ना, वो कहाँ से लाओगे? उसको भोजन देना पड़ेगा क्या? नहीं, क्या भोजन देना पड़ेगा? कार्ड समाप्त हो गया, तो फिर पैसा कहाँ से लाओगे? चलो फिर एक एकड़ खेती भी रखो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा खेती रखने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, वो खत्म हो गया तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आ करके देखेंगे और डाल देंगे, आप चिंता मत करो, ये ले लो रखो, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? वो स्वयं डाल रहा है, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? मुनियों को कहा है, जो हमारे संयम में, संयम की रक्षा में विशेष कोई सहयोग नहीं हो, विशेष कोई सहयोग नहीं हो सकता, उसको रखना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत संयम में उपकारक बन सकता है तो उसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रखने से ज़्यादा नुकसान ही है, फायदा कम है। जैसे खाने पीने की चीज़ें में आप सोचते हैं ना कि कौन सी चीज़ त्यागने में ज़्यादा लाभ है और कौन सी चीज़ ग्रहण करने में ज़्यादा लाभ है, ये सोचते हैं। तो हिंसा की दृष्टि से जब आप सोचते हैं त्याग के क्षेत्र में, कि पहले हम ककड़ी सब्जी वगैरह छोड़ें क्या, प्याज छोड़ें, सोचते कि नहीं सोचते? तो इसमें क्या तथ्य है कि पहले आप प्याज छोड़ रहे हैं और बाद में ककड़ी छोड़ रहे हैं? हिंसा किस में अधिक है? प्याज में अधिक है। उसमें शरीर, निगोदी शरीर कितने हैं? अनंत हैं। और ककड़ी में कितने हैं? उससे कम है, उससे कम। तो कम को पहले छोड़ोगे कि ज्यादा को पहले छोड़ोगे? कोई कहते हैं महाराज चतुर्मास है, चातुर्मास समाप्त होने तक सभी सब्जी को त्याग करता हूँ, लेकिन एक प्याज का छूट दे दो। एक प्याज, तो एक प्याज में 4 महीने तक तुमने जो सब्जी त्यागी, एक प्याज खाना, एक दिन एक प्याज खाना और 4 महीने तक ककड़ी खाना बराबर ही है वो, है? हाँ, नुकसान है बिल्कुल। आप ज्यादा आंकड़ा दे रहे हैं ना, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, अब समझ में आया है। उससे ज्यादा जीव कंदमूल में है, कंदमूल को तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा सोचते हैं ना कि आप किसमें लाभ अधिक है किसमें कम है, वैसे मुनि भी सोचते हैं। चश्मा को रखने से भी नुकसान है, पर आंखें होते हुए भी चश्मा को रखते हैं तो वो तो परिग्रह है, दिखता है फिर भी रख रहे हैं तो परिग्रह है। नहीं महाराज, अच्छा लगे इसलिए रख रहे हैं, थोड़ा सा आंखें वगैरह अच्छे लगने चाहिए, मतलब बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट, दूसरे को स्मार्ट लगना चाहिए चेहरा, इसलिए चश्मा रखते हैं। और उसमें कोई नंबर वाला नहीं है, वो केवल ग्लास वाला ही है वो। गांधी जी के स्टेचू देखा है आप लोगों ने, कहीं कहीं बनते हैं, उनको भी चश्मा लगाया जाता, स्टेचू को चश्मा, और उसमें कांच नहीं होता, फ्रेम ही लगा, केवल फ्रेम लगा देते। सदलगा में एक ऐसा है चौराहे पर, केवल फ्रेम लगाया है, उसमें कांच नहीं। अब बताओ कितना धोखा दे दिया, ऐसा चश्मा ला करके गांधी जी को देना चाहिए जो केवल फ्रेम है और कांच नहीं है, क्या कहेंगे गांधी जी? सोचा जाता है यहां प्रति समय, क्या आवश्यक क्या अनावश्यक, अनावश्यक को रखना परिग्रह के कोटि में है, ये तो पहली बात। और उसमें भी जिससे संयम में हानि होती है, हिंसा होती है या अन्य विकल्प आ सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को रखना भी संयम में बाधा आती है, मुनि धर्म में बाधा आती ही। और फिर रखेंगे तो केवल केवल संघ से ही संपर्क करते हैं, ऐसा भी नहीं, अपना नाम किसी दूसरे को मिल गया, नंबर, अपना नंबर किसी दूसरे को मिल गया तो वो करेगा क्या? नहीं, आप करोगे क्या? नहीं, फिर अरे महाराज के पास तो मोबाइल है, उनका नंबर दो, किसी से ले लिया आपने और हम सामायिक बैठे थे और बजने लगा वो, तो हमारे ध्यान रूपी संयम में बाधा आ गई कि नहीं? संयम में बाधक वस्तुओं को रखा ही नहीं जाता। दूसरी बात, उसकी रक्षा की चिंता आएगी कि नहीं? किसी ने चोरी कर दिया तो कीमती वस्तु है, किसी ने चोरी कर दिया तो आर्त रौद्र ध्यान मन में संकलेश होगा कि नहीं? आपको होता है तो फिर डबल डबल तिबल तिबल रखने के बाद भी होता है आपको, तीन रखा है मान लो एक चला गया, बिल्कुल विकल्प नहीं होता क्या आपका? आपको होता है, कितने अंशों में होता है वो? होता है वो। मुनि भी परिग्रह रखेंगे तो मुनि को भी विकल्प होता ही है, होता है। और फिर उसमें जो कार्ड चाहिए वो चाहिए, उसके लिए धन की याचना करनी पड़ेगी, और धन दूसरे से याचना मत करो ये कहा है तो इस संविधान का उल्लंघन होगा। हाँ, मुनि महाराज केश लॉन्च करते, क्यों करते हैं? एक कैंची रख करके जाओ ना, महाराज मैं वापस ले लूंगा 1 घंटे के बाद, आप ले लो तब तक। तो ले लिया, काट करके तुमको दे दिया, फिर चलेगा? किंची से काट लें? तो शास्त्रों में तो ये संविधान बनाया है कि मुनि को अपने हाथ से ही केश लॉन्च करना, उसमें कोई तथ्य है क्या? नहीं, हाथ से ही करने को कहा है। तो आपने कैंची दे दिया तो हाथ से करने का मतलब नहीं रहा, पर वस्तु पर डिपेंड हो गए हम। हम जब हाथ से कर सकते हैं तो वस्तु की क्या जरूरत, वो अनावश्यक हो गई ना। अनावश्यक वस्तु को रखना भी परिग्रह, परिग्रह की कोटि में रखा उसको, क्योंकि वो अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए है कि हाथ से हो ही सकता है तो फिर कैंची की जरूरत क्यों पड़ती है? कैंची परिग्रह है क्योंकि वो अनावश्यक वस्तु है, और फिर उसको हमेशा रखने के लिए सोचेंगे तो फिर पैसे का भी ओवर आएगा, किसी ने ले लिया और दूसरा चाहिए पड़ेगा, फिर पैसे की मांग, पैसा दे दो जरा, वो करना है। कैंची एक चाहिए पड़ता है, केस लॉन्च आया है, एक कैंची चाहिए पड़ेगा, कैंची परिग्रह। शास्त्र परिग्रह नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है शास्त्र की चोरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि चोरी करके ले जाएगा तो मोक्ष ही जाएगा, और मोक्ष कोई चाहते नहीं है और मोक्ष कोई चाहते नहीं है तो इसकी चोरी कोई मोक्ष की इच्छा ही नहीं रखते हैं तो इसको लेके क्या करेंगे वो। इसलिए शास्त्र की चोरी नहीं होती, कैंची की चोरी हो सकती है पर शास्त्र की चोरी नहीं होगी। इसलिए शास्त्र रखो, तुम्हारा उपकरण है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए कहा है कि शास्त्र को रखो, रख सकते हो। इसके बाद भी उन्होंने कहा पेन भी उसी कोटि में आएगा, कुछ लिखना हो तो ज्ञान के वर्धन के लिए ही वो होता है। कुंद आचार्य भी देखो पहले काल में वो भी नहीं था उतना, मतलब शास्त्र लिखना भी असंयम समझते थे, वो भी नहीं था पहले। अब पंचम काल के जीवों का कल्याण हो ये दया भाव से आचार्यों ने बहुत बड़ी अनुकंपा की। उन्होंने पत्र हाथ में ले लिया, लिखने की वस्तु हाथ में ले ली, लिखा और रख दिया, मेरी जवाबदारी खत्म हो गई, अब ये शास्त्र के संभाल वो श्रावक जाने, वो जाने। साथ में हमेशा नहीं रखा उसको, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए चाहिए उतने समय के लिए बस। मुनि का दूसरा नाम निर्ग्रंथ है। ग्रंथ यानी क्या? ग्रंथ यानी परिग्रह। ग्रंथ शब्द परिग्रह का दूसरा नाम है, ग्रंथ यानी परिग्रह। जिसके पास ग्रंथ नहीं होता उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। देखो ग्रंथ भी नहीं होना चाहिए, ये ग्रंथ भी विकल्प का कारण बन सकता है, बन सकता है क्या? नहीं, ग्रंथ भी विकल्प का कारण। बहुत अच्छी पुस्तक थी, पढ़ रहा था, सुबह पढ़ा था और यहीं रख के गया था और किसी ने उठा लिया, ये विकल्प आ सकता है क्या? नहीं, उठाने वालों ने उठाया, बहुत अच्छा धर्म का ग्रंथ था, उठाया और उसको पढ़ करके कल्याण कर ले तो भगवान बहुत अच्छा, वो मोक्ष जाए, ये तो हम भावना भा सकते हैं। लेकिन ये भावना नहीं आई तो विकल्प हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रंथ को भी नहीं रखना ये कहा। तो महाराज पिंची कमंडल को भी मत रखो, पिंची कमंडल और शास्त्र तीन उपकरण हैं, और कमंडल को भी छोड़ो। तो कमंडल को छोड़ करके हम चलेंगे तो ज्यादा विकल्प बढ़ेगा, रखेंगे तो निर्विकल्प रहेंगे, इसलिए रखो उसको। कमंडल के बिना क्या काम करोगे? असंयम आ जाएगा। पिंची के बिना क्या काम करोगे? एक भी दिन संयम का पालन नहीं होगा, प्राणी संयम, इसलिए ये कंपलसरी। किंतु देखो सामान्य मुनियों को पिंछी है, कमंडलू है, शास्त्र को नहीं रखते हैं तो निर्ग्रंथ है, रखते हैं तो ग्रंथ है, इसको भी ग्रंथ कहा। तीर्थंकरों को देखो तो तीर्थंकर मुनि दीक्षा ले लेते हैं, मुनि दीक्षा लेने के उपरांत वे पिंछी कमंडलू तक नहीं रखते। महाराज ये कैसे, पिंछी कमंडलू के बिना संयम का कैसे पालन होगा? हैं? हैं? अधर्गमन। दीक्षा लेते ही वो चारण रिद्धि बनते हैं, दिगंबर बन गए, दीक्षा ले ली, केश लॉन्च किया, ये हो गया, जहां बैठ गए हैं ना वहां बैठे बैठे दीक्षा ले ली, केश लॉन्च हो गया, अंतर मुहूर्त के लिए सामायिक में बैठ जाते हैं। सामायिक में बैठते ही उनको चारण रिद्धि, वो रिद्धि, ये रिद्धि, समस्त जितने प्रकार की रिद्धियां हैं वो सब प्रकट होती हैं। एक रिद्धि प्रकट होने से बच जाती है, केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान को भी रिद्धि की कोटि में लिया है, ज्ञान रिद्धि। ये रिद्धियां आत्मा की शक्तियां कहलाती है, ये परिग्रह नहीं, विद्या परिग्रह है, आकाशगामिनी विद्या ये मुनि प्राप्त नहीं कर सकते, आकाशगामिनी विद्या को रख नहीं सकते, क्योंकि वो बाह्य देवता शक्ति है, तो देवता शक्तियों को मुनि रखते नहीं, वो देवता ले जाता है आकाश से और छोड़ देता है जहां चाहिए वहां, तो छोड़ने के बाद तो जमीन पर रहना पड़ेगा, आकाश में नहीं रहते। रिद्धि का ऐसा नहीं, हमेशा आकाश में ही शरीर रहेगा, एक भी जीव का घात नहीं होगा। जब जीव का घात नहीं होता है तो पिंची की क्या जरूरत है? किंतु जो जो आकाश रिद्धि को प्राप्त किए हुए मुनि होते हैं वो पिंची कमंडलू रखते ही नहीं, ऐसा भी नहीं। आकाश गामी रिद्धि होने के बाद भी रखना पड़ता है पिंची को और कमंडलू को, किसको? तीर्थंकरों को छोड़कर सामान्य मुनियों को, क्योंकि सामान्य मुनियों को ये शंका है, इसकी भी शंका है, तो जाना पड़ेगा ना उस स्थान पर, तो पिंची लगाना पड़ेगा ना। तो इस चारण रिद्धि को तो पिंची कमंडलू रखना ही पड़ता है, लेकिन तीर्थंकरों को पिंची कमंडलू रखना नहीं पड़ा, क्यों? हाँ? आहार नहीं लेते? हाँ आहार लेते हैं, किंतु उनको निहार नहीं है, न इसके लिए जाना पड़ता है न इसके लिए जाना पड़ता है। आहार भी, आहार तो है लेकिन निहार नहीं है, निहार यानी ये और ये, विहार है, आहार है पर निहार नहीं। जिनको निहार नहीं उनको पिंछी कमंडलू की आवश्यकता नहीं है। कब तक नहीं? केवल ज्ञान होने तक, तो फिर आवश्यक है पिंछी कमंडलू केवल ज्ञान होने तक? कभी आवश्यक नहीं, तीर्थंकरों को तो कभी आवश्यक नहीं। जब वो श्रावक अवस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में थे तीर्थंकर, उस समय मलमूत्र वहां भी नहीं था, जन्म के साथ ही नहीं था, तो फिर आकाश में चलते थे क्या? नहीं, चलते समय कैसे चलते थे? जमीन पर। हिंसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है क्या? नहीं संभव है, गृहस्थ अवस्था में संभव है। गृहस्थ अवस्था में वे संसार करते हैं क्या? नहीं, खेती बाड़ी आदि आदिनाथ भगवान ने किया क्या? नहीं, त्रस्कायिक जीवों की हिंसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थ है, उनके लिए क्या पिंछी? गृहस्थ पिंछी रखते नहीं, क्योंकि हिंसा होती ही है, करना ही पड़ता है, तो पिंछी की जरूरत नहीं होती। गृहस्थों को पिंछी की क्या जरूरत है? पिंची तो उनको चाहिए जिन्होंने ये जीवों की हिंसा त्याग दिया, जीव की हिंसा न हो इसलिए पिंची रखते। यह नमोकार मंत्र मूल मंत्र इसका नाम है। मूल में प्रश्न पड़ा था, फिर मूल पर लौट करके आए हैं। इस मंत्र का नाम मूल मंत्र है। मूल मंत्र का क्या तात्पर्य? सभी मंत्रों का मूल आधार होने से यह मंत्रों का मूल मंत्र है, और वस्तुतः ये परिभाषा इसकी नहीं, ये तो ऊपर वाली परिभाषा हो गई। मूल मंत्र क्यों कहा, जरा डीप और सोच के देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं, अनादि तो है ही, उस वजह से मूल नहीं है। मूल यानी क्या? मूल यानी जड़। हाँ, हम आत्मा है, जीव है, है? हम जीव हैं। हमारा मूल स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, वही हमारा सर्वोच्च धर्म है क्या? नहीं, वत्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो मूल स्वभाव है वो मूल है। ये राग द्वेष आदि तो ऊपर के हैं, पर हमारा स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। उस मूल स्वभाव को जो प्राप्त किए हैं या करने का पूरा पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसे मूल स्वभाव को, मूल धर्म को जो साध रहे हैं रत्नत्रय धारण करके, वो मूल धर्म को साधने के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, इसलिए इस मंत्र का नाम मूल मंत्र। जो मूल की साधना करते हैं उनका मंत्र, जो मूल का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका जो मंत्र है, उनके नाम से जो मंत्र है उसका नाम मूल मंत्र। मूल को साधने वालों का मंत्र मूल मंत्र। लेकिन यहां क्या लिखा? सभी मंत्रों का मूल होने से मूल मंत्र है। ठीक, जो भी मंत्र निकलेंगे इसी से निकलेंगे, इसलिए ये मूलभूत आधार है। मूल ही जिसका आधार है वो मूल मंत्र, ये भी ठीक है। किंतु मूल को साधने वालों का मंत्र होने से इसका नाम मूल मंत्र है, इसका नाम ये हो गया। महामंत्र भी कहा है, सभी मंत्रों से ये महान है, सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का चक्रवर्ती है, सभी मंत्रों का धाम है, केंद्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहा। महा यानी जो समुद्र के समान बहुत विशाल होता है, समुद्र के समान विशाल होता है, वो महामंत्र है, अगाध मंत्र है। जो भी मंत्र निकलेंगे इसी समुद्र से निकलेंगे, जो भी पानी बरसता है दुनिया में सब समुद्र से ही आता है और यहाँ बरसता है। नमोकार मंत्र समुद्र के समान विशाल महान मंत्र है, जो भी मंत्र आते हैं वहीं से आते हैं। जैसे समुद्र से पानी बादल बनकर ऊपर उठता है और यहाँ बरसता है, लेकिन बरसने वाला पानी समुद्र नहीं है, समुद्र में आया हुआ पानी माना जाता है, समुद्र से आया हुआ है वो समुद्र नहीं, ऐसा मंत्र महामंत्र कहलाता है। सभी मंत्रों में महान है, एक ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि ये महा इसलिए है कि इसके अंदर सभी महान आत्माएं हैं। त्रिकाल पंच परमेष्टि ये कैसे हैं? महान हैं, इसमें रहने वाले परमेष्टि महान होने से ये महामंत्र है, ये भी अर्थ है। दूसरा मंगल मंत्र, मंगल क्यों, मंगल यानी पवित्र भी होता है और पाप नाशक भी होता है। जो पाप नाशक होता है वह हमारा पाप नाश करता है, और हमारा पाप नाश करता है या किया तो पाप तो अमंगल है, और अमंगल को गला दिया और हमको मंगल बना दिया यानी पवित्र बना दिया, इसलिए ये मंगल मंत्र है। मंगल मंत्र इसका नाम, एक और दूसरा नाम भी देना चाहिए था, नहीं दिया। क्या ये तो मंगल मंत्र है लेकिन जंगल मंत्र है ये, जंगल मंत्र, क्योंकि मोक्ष पाने वाले संसार को त्याग कर जंगल का शरण लेते हैं। भले ही वो नगर में आ जाए, गांव में आ जाए, कहीं भी आ जाए, पर नगर भी जिसके लिए जंगल बन जाता है मोहादि परिणाम न होने से, ऐसे महान आत्माओं का ये जंगल मंत्र है। जंगल में भी मंगल करने वाला मंत्र है। चौथा नाम दिया है पंच परमिष्टि मंत्र। पंच परमिष्टि मंत्र, पांच परमिष्टि, परमिष्टि किसको कहते हैं, देखो परमिष्टि महान आत्माओं के पदों का एक गौरव शब्द है। जो महान आत्माएं अपने गुणों से, धर्म से, परिशुद्धता से, अपनी योग्यता से, उपादान से अपने आप में स्थित हुए हैं, वे महान आत्माओं का पद पांच प्रकार का होता है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये पद के नाम हैं, व्यक्ति के नाम नहीं, पद के नाम। नमोकार मंत्र में नमो महावीर भगवंतानम किसी व्यक्तिगत नाम है क्या, आदि नाथानम ऐसा नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्तित्व का नाम है। आदिनाथ का व्यक्तित्व क्या है तो अरहंत अवस्था है। आदिनाथ का व्यक्तित्व क्या है कि ये मुनि हैं, साधु हैं, पर नाम उनका क्या है, आदिनाथ। पर नमोकार मंत्र में किसी भी तीर्थंकरों का नाम नहीं आया, और आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं उन अरहंतों का भी नाम नहीं आया, उन साधुओं का भी नाम नहीं है। और नाम लिख देते तो कितना छोटा हो जाता ये, इसमें पांच ही लोग रहते, पांच ही लोग नाम वाले, और फिर इतना पता लगाते कि ये कौन है, ये साधु परमिष्टि, क्या नाम, ये नाम, अच्छा ये क्या हो गए, तो ये बाद में अरहंत बन गए और अरहंत बनकर मोक्ष गए, और इसके बाद फिर किसका नाम खत्म ही हो गया, फिर अनादि नहीं कह सकते। जब वो हुए थे तब नाम सहित रखा, और जब वो मोक्ष चले गए तो नमोकार मंत्र खत्म हो गया। तो यहां कहा पंच परमिष्टि का मंत्र है ये, परमिष्टि पद होता है, महान पद का नाम परमिष्टि। कैसा शब्द बना, परम, हाँ, परम स्थाने तिष्ठति इति परमिष्टि। परम स्थान कितने हैं, दो ही हैं, कौन सा पद, एक सिद्ध पद है और एक रत्नत्रय का पद है। रत्नत्रय को साधने वाले परमिष्टि चार हैं, और साध करके उसका फल पाए हुए परमिष्टि एक है, सिद्ध भगवान। चार परमिष्टि के पास रत्नत्रय साधने का, जो को अरहंत भगवान भी रत्नत्रय को साधने वाले ही कहलाते हैं, क्योंकि वे अरहंत बनने के बाद भी 13वें गुणस्थान में अभी उनको दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये पूर्ण तो हो गए। सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन है, और सम्यक ज्ञान क्षायिक सम्यक ज्ञान है, वो उसका नाम केवल ज्ञान, किंतु चारित्र, क्षायिक चारित्र होने के बाद भी अभी वो पूर्ण नहीं है। वह 14वें गुणस्थान में अरहंत भगवान प्रवेश करने के बाद पूर्ण होगा। 18,000 शील होते हैं और ये चारित्र के अंग हैं। 18,000 प्रकार के शील सभी अभी पूर्ण नहीं हुए हैं 13वें गुणस्थान में अरहंत को। अभी शीलों को उन्हें पाना है। कैसा शील? देखो, अभी एक शुक्ल ध्यान को साधना है, वो काम शेष है क्या? नहीं। तो अभी वो चारित्र ही है, चारित्र का अंग है वो शुक्ल ध्यान, अभी वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो चारित्र की कमी है क्या? नहीं। ध्यान ये चारित्र, चारित्र की कोटि में आता है और ये अभी कमी है। जब वो चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेंगे उनका चारित्र पूर्ण हो जाएगा। और चौथे शुक्ल ध्यान को जब वो पूर्ण करते हैं तब उपदेश नहीं दे सकते, विहार नहीं कर सकते, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। वो अपने मन वचन काय को निरोध करके, निग्रह करके आत्मस्थ बन जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे। और ध्यानस्थ होने के उपरांत चारों आघाती कर्म नष्ट हो गए। चारों घाती कर्म को नष्ट करने की शक्ति चौथे शुक्ल ध्यान में है। 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान के अंत में एक शुक्ल ध्यान है, 14वें गुणस्थान में एक शुक्ल ध्यान है, 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक एक शुक्ल ध्यान है पहला वाला। दूसरा वाला 12वें गुणस्थान में है शुक्ल ध्यान। तीसरा वाला 13वें गुणस्थान के एंडिंग टाइम में, यानी वो 14वें गुणस्थान में प्रवेश करने वाले हैं उससे पहले एक शुक्ल ध्यान तीसरा 13वें गुणस्थान के अंत में है, अंतिम टाइम में। और चौथा शुक्ल ध्यान जो ही 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर गए एक सेकंद के लिए, कितना अलरी इतना उच्चारण करने में जितना समय लगा इतना ही काल शुक्ल ध्यान का काल है। और उतने ही काल में सारे आघाती कर्म नष्ट हो करके आत्मा शरीर से बाहर आती है, सिद्ध परमिष्टि बनकर मोक्ष जाती है। ऐसे भगवान बनने की यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का ज्ञान तो हो गया, अब बनने का अभ्यास करना चाहिए। टाइम हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध।